मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
तो याद रखो, ये खुदाई कवानीन है अल्लाह के, जिसको इस्लाम कहा जाता है। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दे दी है, क्योंकि जब हमारे सामने कोई लॉ आता है ना, तो उसमें दो राय हो सकती है, सही भी और गलत भी। जब आप किसी लॉ के बारे में कंफ्यूज हो गए, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो उस लॉ पे चला जाता है। टैक्स के कानून आते हैं, गवर्नमेंट कहती है इतना टैक्स दो, बहसें होती हैं, अबे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ दे रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, और जो दे रहे होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं पता नहीं देना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, इतना टैक्स बनता भी है कि नहीं बनता, बनता है तो सही जगह इस्तेमाल भी होता है कि नहीं होता। फिर गवर्नमेंट गुर्बत 10 पैसे आती है ना, टैक्स तो देना चाहिए। लेकिन मैं वैसे एक ओवरऑल लोगों की थिंकिंग बता रहा हूं, टैक्स तो जब किसी हुकूमत में रहते हो देना चाहिए, कानून है, लॉ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी दो राय बनती है ना। लोग कहते हैं अबे हमें हुकूमत ने इलाज तो किया नहीं, दिया नहीं, बिजली देती नहीं है, गैस देती नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रही है, ये कर। तो दो राय होती है, लिहाजा वो दिल जमी से अमल नहीं होता। और जब दिल जमी से अमल नहीं होता तो सवाब का तसव्वुर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। वो इसी पर मुतमईन नहीं है कि पता नहीं मैं टैक्स देके अपने बेड़ा गर्क कर रहा हूं या अपना फायदा कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने हमें कानून दे दिया। आज मैं तलबा को ना दर्स तफसीर पढ़ाता हूं ना, तो चोर के बारे में आयतें आई, वस्सारिक वस्सारिकतु फक्ताउ अयदीहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, अल्लाह फरमाते उनका हाथ काट डालो। जजाम बिमा का सबा, जो जुर्म इन्होंने किया इसकी सजा है, नकालम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये पकड़ है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह जबरदस्त गालिब और हिकमत वाला है। क्यों ये क्यों फरमाया गालिब और हिकमत वाला है? ये इसलिए कि भाई 5-6 हजार रुपए की किसी बंदे ने चोरी की, अल्लाह कह रहे हैं हाथ काट दो। इंसानी अकल कहती है ना कि यार हाथ करोड़ों रुपए का और चोरी 5 हजार, 5 हजार के बदले में बंदे का हाथ ही काट दिया आपने, तो बजाहिर तो ये जुल्म लगता है ना, समझ में नहीं आता। तो अल्लाह ने निष्कालात के जवाब दिए, फरमाया इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह जबरदस्त, वल्लाहु अजीजुन हकीम है या इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, कि अल्लाह जबरदस्त गालिब है और हिकमत वाला। गालिब का मतलब कि तुम जो हाथ काट रहे हो खुद से नहीं काट, तुम्हें किसी का हाथ काटने की इजाजत नहीं है किसी जुर्म पे, अल्लाह को इजाजत है। तो ये हाथ काटने की निस्बत किसकी तरफ होगी? अल्लाह ने काटा है, तुम तो सिर्फ उसके नुमाइंदे बन रहे हो। तो अल्लाह को तो इसकी भी इजाजत है कि वो ट्रक के नीचे किसी को कुचल दे। भाई अल्लाह ताला तो किसी को आग में जला के भी मार सकता है, समंदर में डूबा के भी हलाक कर सकता है। अगर तुम हाथ नहीं काटोगे तो अल्लाह तो वैसे भी कोई डेंगू उसके ऊपर छोड़ दे, वैसे ही तड़प तड़प के मर जाए वो। तो अल्लाह गालिब है। इंसान के लिए चोरी पर किसी का हाथ काटना जायज नहीं है, कितना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए तो पूरा बंदा मारना, अल्लाह मारते हैं ना बगैर किसी जुर्म के भी लोगों को मौत दे देते हैं। तो गालिब तो अल्लाह है। तो जब अल्लाह का लॉ है, अल्लाह का कानून है, तो कोई अगर तुमसे गैर मुस्लिम पूछे कि हाथ क्यों काट रहे हो, 4-5 हजार के बदले में करोड़ों का हाथ काट रहे हो, तो आप बोले भाई अल्लाह इसको मार भी सकता था, हम नहीं काट रहे, कौन काट रहा है? अल्लाह काट रहा है, हम तो उसके हुक्म, उसने हमें नुमाइंदा बनाया कि करो वरना तुम्हें नहीं बख्शूंगा फिर मैं, सही है ना। हुकूमत तो अल्लाह की नाइब होती है ना जमीन पे। और आगे अल्लाह ने फरमाया हकीम, इसमें दूसरे इश्काल का जवाब दिया कि अल्लाह तू गालिब है, तू जो चाहे कर सकता है। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, भाई तू बादशाह जो चाहे कर, लेकिन ऐसा लगता है कि अच्छा कर नहीं रहा है, गोया माज अल्लाह अपने इख्तियारात का गलत फायदा उठा रहा है। 5 हजार की चोरी की है, करोड़ों का हाथ काट दिया, वैसे कुदरती हादसे में मार देता तो चलो, हमें तू कह रहे जाके हाथ काटो, तो ठीक है लॉजिकली ये बात दुरुस्त है, तू सब कुछ कर सकता है तो तुझे हाथ काटने का भी इख्तियार है। तो लेकिन ऐसे ही जैसे कोई बादशाह हो, ताकतवर हो, वो अपनी ताकत का फायदा उठा के कुछ भी करता चले जाए। तो अल्लाह ने आगे जवाब दे दिया, हकीम हिकमत वाला है, इसमें फायदा है, नुकसान इंसानियत का फायदा है, ये हुक्म हिकमत पर मबनी है। चोर का हाथ काटने का हुक्म देना जुल्म नहीं है, बल्कि जुल्म के खात्मे का सबब है। इसमें तुम एक चीज को देख रहे हो कि 5 हजार की चोरी की और हाथ कट गया, ये नहीं देख रहे कि इस 5 हजार की चोरी से नुकसान 5 हजार का नहीं हुआ, मुआशरे में जो फसाद फैल रहा है ना, वो फसाद इस 5 हजार की निस्बत कई गुना ज्यादा है। आज 5 हजार चोरी की है, कल 5 करोड़ चोरी करेगा, और फिर मजीद आगे बढ़ के टकेतियां करेगा, फिर जब चस्का लग जाएगा ना उसको, तो फिर बंदे मार मार के पैसे निकालेगा, फिर बंदों को कत्ल भी करेगा। एक हाथ को बचाने के लिए दर्जनों लोगों का कत्ल करवा दोगे तुम। तो चोर जितने भी मुजरिम है ना दुनिया में, वो पैदाइशी मुजरिम नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता, देखो आज जो शराब पी रहे, तो डायरेक्ट शराब पे थोड़ी आया, वो पहले सिगरेट पे आया, गुटखों पे आया, पान पे आया, जब आदी हो गया चलो भाई यहां भी चलो, जो आज कत्लो गारत में लगे हुए हैं ये बचपन में पहले घंटियां बजा बजा के भागा करते थे, इनकी शरारतें बस इतनी होती थी, अब्बा से पिटे नहीं, किसी ने तंबी नहीं की, फिर मस्जिद से चप्पलें छुड़ाना शुरू कर दी, फिर किसी ने मारा नहीं कि चप्पल ही तो है, फिर नतीजा होते 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 लॉकर से पैसे चुराना, फिर अब्बा के पर्स से, फिर इंसान को जब फ्री में पैसा मिलता है ना तो हवस बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर उसके खर्चे इतने हो जाते हैं कि हलाल में वो खर्चे पूरे नहीं होते। जो उन्होंने जो जवानी का टाइम हलाल कमाने की सलाहियत में लगाना था वो सारी सलाहियत चोरियों चुकारियों में लग चुकी होती है, जो वहां सलाहियत, अब वो तभी आप देखें, अब उसको ना, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक जानने वाले मिले, रिश्तेदार तो नहीं थे, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बैन अलावामी टीम में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब रक्षा चला रहे हैं वो। हमने कहा यार इतना बड़ा खिलाड़ी रक्षा की, उन्होंने कहा भाई सारी जिंदगी तो क्रिकेट में लगा दी कि मैं बैन अलावामी टीम का खिलाड़ी बनूंगा, अब सिलेक्शन नहीं हुई तो अब आता वाता क्रिकेट के अलावा कुछ है नहीं, तो अब कमाने के लिए तो क्रिकेट में इतना पैसा तो नहीं, बैन अलावामी टीम में जाओ तो मिलता है ना पैसे, ऐसे तो गली महल्ले वालों को थोड़ी मिलता है, तो सारी जिंदगी तो लगा दी उसमें, अब क्या बेचारा क्या चला रहा है, रक्षा चला रहा है, ना एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी। हाँ जिसकी लक लग गई वो इंटरनेशनल टीम में चला गया या उससे कम लेवल की टीम में, लेकिन किसी बड़ी टीम में चला जाएगा तो उसकी तो वैल्यू हो जाएगी, जो नई सिलेक्शन हो सका सबका थोड़ी होता है, लाखों लोग आते हैं एक चंद एक का होता है उसमें, तो ऐसे ही जब चोरी चुकारियों में टाइम गुजार दिया तो अब हलाल में कमाने की सलाहियत भी नहीं है और हलाल में इतना प्रॉफिट है भी नहीं, चोरी में तो बड़ा प्रॉफिट है, बैठ बैठ यूं करो बस पता ही नहीं किसी को, क्या ख्याल है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बैनुल अक्वामी लॉज अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने जो कानून बनाया ये हिकमत पर मबनी है, एक का हाथ कटेगा सैकड़ों लोगों को इबरत होगी, लोगों की जान भी महफूज, लोगों का माल भी, तुम सिर्फ 5,000 देख रहे हो कि 5,000 के बदले में करोड़ों का हाथ कट रहा है, हम सिर्फ 5 नहीं देख रहे, हम आगे पूरा फ्यूचर देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और दूसरी बात यह कि यह जरूरी भी नहीं है कि पहली दफा में पकड़ा जाए, ये तो जब आदत हो जाती है ना, अक्सर हजरत उमर के दौर में एक चोर पकड़ा गया, उसने कहा अल्लाह की कसम पहली दफा चोरी की है माफ कर दे, उन्होंने फरमाया कि पहली दफा में पकड़ा नहीं जाता आदमी, सही है ना, पहली दफा में तो बहुत एहतियात करता है, जब यूज टू हो जाता है कर करके फिर एहतियात छोड़ देता, कई दफा देखा ना नहीं पकड़ा गया तो फिर कर लेता है। कल किसी ने बताया कि डकैती के लिए कुछ लड़के आए 17-18 साल के, जिनके साथ डकैती, उन्होंने मुझे खुद कल वाकया सुनाया, कह रहे उन लड़कों को मैंने देखा, पिस्तौल उनके हाथ में थी, हाथ कांप रहे थे उनके, ऐसे लग रहा था कि अभी ये डकैती सीख रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, कह रहे मैंने इसलिए मोबाइल दे दिया कि कांपते हुए उंगलियां ऐसे चली ना जाए। हाँ वो मुझे, मैंने कहा यार तुमने तो अजीब आदमी हो, तुमने उसको जब वो कांप रहे थे तो थोड़ा धक्का वक्का लगा देते उसको, कह रहे यार मुझे डर ही था कि कांपते हुए में कहीं ना चाहते हुए ना गोली चल जाए। तो अब देखो, उन्होंने मुझे खुद कल का वाकया है, कह रहे हैं कि ऐसे हाथ ना उसके डाकू के, 17-18 साल का बच्चा था। तो आप मुझे बताओ, ये 17-18 साल का बच्चा जिसके अभी हाथ कांप रहे हैं, तो क्या ये पहली दफा बंदूक पकड़ रहा है? इससे पहले इसने कभी चोरी नहीं की होगी, यकीनन इससे पहले कम दर्जे के जराइम की, उसका चस्का लगा तो इसने कहा आप जरा तरक्की करो, और 2-4 दफा हाथ कांपेंगे, जब लोगों ने मोबाइल पकड़ा दिया तो फिर इतना कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि कुछ वक्त के बाद हाथ कांपना खत्म, फिर तो ऐसे बंदूक रखेगा। यहां वो एक उबर में मैं सफर कर रहा था कुछ दिन पहले, तो एक उबर वाले के साथ ना मैं बैठा हुआ, तो अक्सर जान पहचान वाले टैक्सी ड्राइवर निकल आते हैं, कह रहे अरे मुफ्ती साहब खैरियत से, मैंने कहा भाई खैरियत से, कहां जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, तो मुझे कहने लगा यार डकैतियां बहुत होती हैं, मैंने कहा कोई दिलचस्प वाकया हो, कह रहे हैं कुछ दिन पहले कुछ डाकू आए, मैं किसी फैमिली को लेके जा रहा था, वो डाकू आए मुझे कहने लगे, गाड़ी रोकी ना, बोले निकाल मोबाइल दे और पैसे दे, कहते मैंने कहा कुछ असलिया तो दिखाओ, खाली हाथ, ये उसको उनको बोल रहे, कह रहे उनके पास असलिया नहीं था, अब रात का अंधेरा था तो वो सिर्फ खौफ बिठा के ना, तो वो उबर का ड्राइवर मुझे कह रहा है कि मैंने उनसे कहा भाई अगर तेरे पास बंदूक है तो दिखा दे, मैं अपना मोबाइल भी दूंगा, पीछे जितनी खवातीन बैठी हुई है ना उनसे भी मोबाइल लेके तुझे पकड़ा दूंगा, और अगर असलिया नहीं है तो यहां से दफा हो जा, मैं गाड़ी कुचलता हुआ निकल जाऊंगा तुझे, उसके पास नहीं था असलिया, वो भाग गए। मैंने कहा आपने तमीज से उनको तरगीब दे दी कि आइंदा जब सफर डकैती करेंगे तो बंदूक साथ में रखें वो, हाँ मैंने कहा आपने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि भाई आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। क्या आइंदा जब भी जाओ तो कोई प्लास्टिक की गन रख लेना, लेकिन रखना जरूर। तो चलो इन्होंने तो गलत किया, उनको इस तरह की तरगीब दे दी ना चाहते हुए, इनकी नीयत ये नहीं थी। लेकिन होता तो यही है ना कि पहले बगैर असलेह के ट्राई करते हैं, फिर कहते हैं यार जो मजा असलेह पहली दफा पकड़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जबरदस्त गालिब है, जो चाहे हुक्म नाजिल कर दे, तुम्हें चूनो चिरा की इजाजत नहीं है, मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो सदर को इख्तियार होता है ना, आजकल शरीयत में तो इख्तियार नहीं है, लेकिन कानून में आजकल इख्तियार है कि फांसी की सजा को वो मुअत्तल कर सकता है। तो हम कहते हैं सदर को इख्तियार आते हैं, उसने अपने इख्तियार इस्तेमाल किए बगैर किसी लॉजिक के, बस फांसी की सजा खत्म कर दी, ये गैर शरीय है। इस्लाम में सदर को या वजीर आजम को इख्तियार नहीं है कि फांसी की सजा, यानी किसास के तौर पर अगर किसी को कत्ल कर रहे हैं। तो यहां भी अल्लाह कह रहे भाई मैं बादशाह हूं, मैंने कह दिया हाथ काटो तो काट दो। और फिर आगे अल्लाह ने बता दिया कि हिकमत है, छुपी हुई हिकमतें, हर हिकमत तुम्हारी समझ में आना जरूरी नहीं है। फिर आगे फरमाया वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए जमीन और आसमानों की बादशाही है। युअज़्ज़िबु मन यशा यग़फिरु लिमन, देखो कुरान में अक्सर ये होता है यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसकी चाहे मगफरत करे, जिसको चाहे अजाब दे। लेकिन यहां पर अल्लाह ने पहले बयान फरमाया जिसको चाहे अजाब दे, जिसकी चाहे मगफरत, क्योंकि चोर के हाथ काटने की बात चल रही है ना, तो मैं जिसको चाहूं अजाब दूं। एक बड़े लिबरल किस्म के आदमी थे, इस्लाम के खिलाफ बहुत एतराजात करते थे, ये चोरी की जो चोर का हाथ काटने की सजा है ना, इस पर भी बहुत कहती यार ये क्या है, 5,000-10,000 रुपए चोरी की और हाथ काट दो ये क्या है। लेकिन अल्लाह ने उनको हिदायत दी, एक दिन मेरे पास आया, कहने यार अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो इसकी लॉजिक बनती है। मैंने कहा क्या, कह रहे हैं यार ये इसकी दलील है कि इस्लाम जुर्म को बर्दाश्त, जुर्म के मामले में बहुत हसास है, तो ये पॉजिटिव चीज है इस्लाम की, समझ रहे हैं ना, मुजरिम के लिए रियायत, बोलो भाई, सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना, नरम इस्लाम के लिए, नरम यानी लबो लहजा इस्लाम मुजरिम के लिए इख्तियार नहीं करता। तो ये तो जराइम के खात्मे पर इस्लाम की हिर्स है कि वो तो दुनिया में जुर्म मानता ही नहीं है। तो मैंने कहा यही बात है, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोचते रहोगे तो जाते चले जाओ, उल्टा सोचते रहो। तो इतने लोगों के, एक दिन मुझे एक साहब कहने लगे यार अगर चोर का हाथ कटे तो सारे टुंडे पुंडे हो जाएंगे, तो सारा आधा आधा मुल्क तो चोर है, तो ये तो बड़ी, ये तो समझ में, इस जमाने में ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाईजान ऐसा नहीं होगा, एक दो के कटेंगे तो बाकी चोरी से तौबा कर चुके होंगे, ठीक है ना, एक दो के कटेंगे हाथ, बाकी सब तौबा कर। तो इस्लाम में डाकू की सजा बड़ी सख्त है, जो दिन दहाड़े लोगों से या रात को अलानिया लोगों से डकैतियां करते हैं, इस्लाम में उनकी सजा ये है कि भाई अगर ये गिरफ्तार हो जाए हाथ पांव काट के चौक पे लटका दो, इनको कत्ल करो इनको फौरन, ये जेल वेल नहीं है इस्लाम में, जेल में डाल दो, 25 साल केस चल रहा है भाई, गवाहों से साबित हो गया, फौरन लटका के चौक पे लटका दो उसके, अयुकत्तलु औ युसल्लबु औ तुक़त्ता अयदीहिम वअर्जुलुहुम मिन खिलाफिन। तो कहां से कहां बात चली गई, तो ये जो हुदूद है ना, हुदूद जो इस्लाम ने बयान की सजाएं, इसमें गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं होता कि वो चाहे तो नाफिज करे चाहे तो नाफिज नहीं करे, यहां हुकूमत पाबंद होती है कि ये अल्लाह का कानून है, आपकी समझ में आए ना आए आपने नाफिज करना है। तो असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोई बात करेंगे तो ये अल्लाह से बगावत शुमार होगी, वो इसके पाबंद है कि वो इस कानून को पास कराने की कोशिश करेंगे। भाई ये तो तयशुदा, ये तो कुरान ने बयान कर दिया, चोर का हाथ तो कटेगा ही कटेगा, ये तो अल्लाह ने हमें आसानी दे दी कि बहुत से मोटे मोटे कवानीन में हमारे लिए सोचने का ऑप्शन खत्म, क्योंकि जो सोचता है वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होगा तो वो कोई भी कोई, तभी हमारे मुल्क में देखो ना कानून बनते ही नहीं है, बनते हैं तो 10 किस्म की आरा सामने। अगर इस्लामी कानून हो भाई, चोर का हाथ कटेगा, जो दिन दहाड़े या रात को दहशतगर्दी करेगा उसको फौरन पकड़ के चौक पे लटका दिया जाएगा। अब असेंबली में इस पर बहस हो भाई, शराब पीने वाले को 80 कोड़े लगेंगे, ठीक है ना, को एजुकेशन को खत्म किया जाएगा। अब भाई क्यों, इसलिए कि कुरान ने बयान कर दिया। अब और आगे की चीजें सोचो जिनको कुरान और हदीस ने सराहतन बयान नहीं किया, उस पर हम बैठ के गौर करेंगे। ये जो चीजें बयान कर दी हैं वो तो तयशुदा है भाई, उसमें तो दो राय हो नहीं सकती, इस्लाम के नाम पर बनाए ना, तो इसमें असेंबली बहस करना ही गलत है। जो असेंबली में पहुंचे हुए लोग हैं उन पर लाजिम है कि भाई ये तो है, ये तो तयशुदा है, इसमें दो राय थोड़ी हो सकती है। लेकिन क्यों गड़बड़ करते हैं, उनको डर होता है कि हमारी अय्याशियां, बोलो भाई, अब कोई शराब पी के पहुंचा हुआ हो ये कानून पास करेगा कि शराबी को 80 कोड़े, तो वहीं से इब्तदा होगी, भाई चलें फिर साइड पे आप आ जाएं, आज बिल पास हुआ आ जाए भाई, गड्डी पंजाब में तो ना गड्डी नो साइड तला जी, तो सबसे पहले आ जाओ भाई साइड पे हो जाओ, ठीक है ना।